नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामनेई की अमरीका और इसराइल के हवाई हमलों में मौत हो गई है। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने भी खामनेई की मौत की पुष्टि की है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि खामनेई की मौत ईरानी जनता के लिए अपना देश वापस लेने का बड़ा अवसर है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमले पूरे सप्ताह या उससे भी आगे जारी रहेंगे। खबरों के अनुसार इन हमलों में ईरान के लगभग 40 अधिकारी भी मारे गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ईरान में 40 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की गई है।
खबरों के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हवाई हमले के बाद हुई है, जिसमें ईरानी सैन्य और सरकारी ठिकानों को निशाना बनाया गया। एक वरिष्ठ इसराइली अधिकारी के अनुसार खामनेई का शव बरामद किया गया है। इससे पहले राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रसारित अपने संबोधन में इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा था कि एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया और पूरे क्षेत्र में व्यापक जवाबी कार्रवाई हुई। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई के कार्यालयों के पास तेहरान समेत कई शहरों में विस्फोटों की खबर मिली। ईरान की सरकारी मीडिया ने कम से कम 200 से अधिक लोगों की मौत और 700 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना दी है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
इस संघर्ष के कारण कई और देश भी प्रभावित हुए हैं। अबूधाबी, बहरीन और कुवैत में भी विस्फोटों की सूचना मिली है। संयुक्त अरब अमीरात, कतर और कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है और दुबई हवाई अड्डे पर उड़ानें निलंबित कर दी गई हैं। इराक ने भी अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। पश्चिम एशिया में भारतीय दूतावासों ने भारतीय नागरिकों से क्षेत्रीय स्थिति को देखते हुए दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। इसराइल स्थित भारतीय दूतावास ने देश में अस्थायी रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों से अपनी पिछली सलाह का पालन करने और समय पर सहायता और संचार की सुविधा के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करने का अनुरोध किया है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल खाड़ी देशों के कई विदेश मंत्रियों से बातचीत की। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से तनाव कम करने की आवश्यकता पर बल दिया। डॉ जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के साथ खाड़ी क्षेत्र की बदलती स्थिति पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने कल शाम कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से भी बात की। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण आज 444 उड़ानें रद्द होने की संभावना है। इस बीच चीन ने भी ईरान में अमेरिका और इसराइल के हमले के बाद तुरंत संघर्ष विराम की अपील की है। चीन के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने तथा समझौते के लिए बातचीत करने की अपील की है। उधर इसराइल में चीन के दूतावास ने अपने नागरिकों से सुरक्षित स्थान पर जाने या मिस्र चले जाने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुदुचेरी और तमिलनाडु में 7,100 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पुदुचेरी में प्रधानमंत्री 2,700 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री तमिलनाडु के मदुरई में 4,400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री कुंभकोणम, यरकौड और वेल्लोर में 3 नए आकाश एफएम रिले ट्रांसमीटर्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मदुरई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की रैली को संबोधित करेंगे। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज सुबह आंध्र प्रदेश में तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। पुजारियों ने पारंपरिक सम्मान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उनका स्वागत किया। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना वेस्टइंडीज से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। इस मैच का विजेता सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा। एक अन्य मुकाबले में दोपहर 3 बजे दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे आमने सामने होंगे। इससे पहले कल पाकिस्तान सुपर 8 के मैच में श्रीलंका पर 5 रन से जीत हासिल करने के बावजूद विश्व कप से बाहर हो गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।